नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भीष्म जी महाराज ने युद्ध करते करते जब सरसैया पर क्या क्या भीष्म पिता मैंने दोनों सेनाओं का वर्णन किया है और दोनों ने कैसी व्यूह रचना की है संजय सब सुना रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भीष्म जी ने एक अभेद्य व्यूह को बना लिया है तो वे उदास होकर अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन जिनके सेनापति पितामह भीष्म हैं उन कौरवों के साथ हम लोग कैसे युद्ध करेंगे। कितना विलक्षण भीष्म ने ये अभेद्य व्यूह बनाया है, इसने तो हमें और भी सेना को संशय में डाल दिया है, इसने हमें और हमारी सेना को संशय में डाल दिया है। अब इस महाव्यूह से हमारी कैसे रक्षा होगी। अर्जुन ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, ये तो आज युद्ध का पहला दिन है, ये तो पहली व्यूह रचना है। इस व्यूह रचना में यदि हम लोग घबरा जाएंगे और ये व्यूह रचना हमको अभेद्य लगेगी तो अभी तो युद्ध बहुत पड़ा है, ये ज्यों ज्यों व्यूह रचना करें त्यों त्यों हमारे मन में उत्साह आना चाहिए। जिस युक्ति से थोड़े से मनुष्य भी बुद्धि गुण और संख्या में अपने से अधिक वीरों को जीत लेते हैं वो उपाय मेरे पास है। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवताओं विजय की इच्छा रखने वाले वीर बल और पराक्रम से भी वैसी विजय नहीं प्राप्त कर सकते जैसी सत्य दया धर्म और उद्यम के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म अधर्म और लोभ की अच्छी तरह जानकारी रखो, अभिमान शून्य होकर के उत्साह के साथ युद्ध करो। जहां धर्म होता है उसकी विजय होती है। ये बात भीष्म पिता मैंने भी कही थी, महाभारत में ये बार बार चलेगा, ये तो धर्मस्य तत्वो जयः है, जहां धर्म है उसकी जीत होती है। राजन इसी प्रकार आप भी जान लें कि इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। नारद जी ने कहा है, जहां कृष्ण है वहां विजय है, क्योंकि विजय कृष्ण का एक गुण है। गुण सदा गुण अपने अधिष्ठान के अंदर रहता है, गुणों के अधिष्ठान भगवान है, अधिष्ठान माने जगह। गोविंद का तेज अनंत है, साक्षात सनातन पुरुष हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण जहां हैं उस पक्ष की विजय होगी, महाराज मुझे संदेह नहीं है। आप ये विषाद क्यों करते हो, क्योंकि हमारी विजय की कामना तो श्री कृष्ण करते हैं। युधिष्ठिर प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर ने भीष्म का मुकाबला करने के लिए व्यूहाकार खड़ी हुई अपनी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी, आगे बढ़िए। उनका रथ इंद्र के रथ के समान सुंदर था तथा उस पर युद्ध की सामग्री रखी हुई थी। जब वे उस पर सवार हुए तो उनके पुरोहित ने जोर से आवाज लगाई, शत्रुओं का नाश हो, ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया तथा ब्रह्मर्षि और श्रोत्रिय विद्वान जप मंत्र और औषधियों के द्वारा सब ओर से स्वस्तिवाचन करने लगे। तब युधिष्ठिर ने वस्त्र, गौ, फल, फूल, स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को दान में दी, फिर युद्ध की आगे यात्रा की। भीमसेन ने आपके पुत्रों का संहार करने के लिए बड़ा भयानक रूप धारण कर रखा था। लोग देखते थे कि दैत्य कौन आ गया। उसे देखकर आपके योद्धा एकदम घबरा उठे और अपने रथ को पीछे करने लगे। आपके सारे पुत्रों में भीमसेन का स्वरूप देखते ही भय भय छा गया और उनका उत्साह साहस खत्म हो गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे नरश्रेष्ठ, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में खड़े हो सिंह के समान हमारे सैनिक हमारी तरफ देख रहे हैं, यही कुरुकुल की ध्वजा फहराने वाले भीष्म जी हैं। वो शत्रु सेना में हमारी ओर देखने वाले, जैसे सूर्य को बदल ढक देता है, उसी प्रकार ये सेनाएं इन महानुभाव को घेरे खड़ी है। तुम पहले इन सेनाओं को मारकर फिर भीष्म पिता से युद्ध करने की इच्छा करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सेना की ओर दृष्टिपात किया और युद्ध का समय उपस्थित देख अर्जुन के हित के लिए कहा, महाबाहो, युद्ध के आरंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए पवित्र होकर तुम दुर्गा देवी की स्तुति करो। भगवान वासुदेव की आज्ञा से अर्जुन रथ से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गा का स्तवन किया। हे मंदराचल पर्वत निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री, अर्जुन आज आपको पुकार रहा है। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। तुम ही कुमारी हो, तुम ही काली हो, कापाली हो, कपिला हो, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली, महाकाली के नाम से प्रसिद्ध हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। हे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाली देवी, भक्तों के संकट को तारने वाली तारिणी हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बड़ा तेजस्वी है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे महाभागे, तुम ही सौम्य और सुंदर रूप वाली कात्यायनी हो और तुम ही विकराल रूप धारण करने वाली काली हो। तुम ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करते हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो। गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हो। पीताम्बर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्र के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत प्रिय है। हे देवी, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभ नाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी, सुधूम्राक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी, तुमको अनेक प्रकार से नमस्कार है। तुम वेदों की श्रुति हो। तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय है। तुम ही जात वेदा अग्नि की शक्ति हो। जम्बू, कटक और मंदिरों में तुम्हारा नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। हे भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद माता, सावित्री तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम है। हे महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणांगण में मेरी सदा जय हो। माँ, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घर में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो, युद्ध में दानवों को हराती हो, तुम्हें जम्बिनी, मोहिनी, माया, री, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो, तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी हो, तुम्हें ऐश्वर्यवानों की विभूति हो, युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन की भक्ति देख, मनुष्य पर दया करने वाली देवी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे पांडुनंदन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, तुम साक्षात नर हो और नारायण तुम्हारे सहायक हैं, अब तुमको कोई नहीं दबा सकता। शत्रुओं की तो बात ही क्या, तुम युद्ध में वज्रधारी इंद्र के लिए भी अजेय हो। वह वरदायिनी देवी इस प्रकार कहकर क्षण भर में अंतर्धान हो गई। वरदान पाकर अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने रथ पर आ बैठे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हुए अपने दिव्य शंख बजाने लगे। महाराज, मैं आपका सेवक संजय अभी भी आपसे निवेदन करता हूं, जहां धर्म है वहां धृति है, वहां कांति है, जहां लज्जा है वहां लक्ष्मी और सुबुद्धि है, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां विजय है। अब सुनो गीता। धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखो। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभूत और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी यहां पर खड़े हुए हैं। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति उनको बताता हूं, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में बड़े चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज करके शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि बाजे बजने लगे। ये बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाली भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने राजन अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों आपके पुत्रों के हृदय विदीन कर दिए। राजन, इसके बाद कपित ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर तब ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा कर दीजिए। इस युद्ध में ये राजा लोग दुर्बुद्धि दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले यहां प्राणों की बाजी लगाकर सेना लेकर आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। संजय बोले, धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि पार्थ, युद्ध के लिए डटे हुए इन कौरवों को देखो। देखो सेना के बीच का अर्थ क्या है, यूं सेना थी उसके बीच में और ये दोनों सेना थी इसके बीच में, ये था बीच, ये जो स्पैच है इसमें भी बीच में और यूं और यूं, यूं और यूं उसमें बीच में, यहां आके खड़े हुए। पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं को देखा, सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। उन्हें उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन कहने लगे। अर्जुन बोले, कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते चले जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। केशव, लक्षणों के भी विपरीत में क्या देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं अपना कल्याण नहीं देखता हूं। कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न मुझे राज्य की परवाह है, न मुझे सुखों की इच्छा है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट वस्तुएं चाहते हैं वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन खड़े, ताऊ चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, नाती, साले और भी बहुत से संबंधी लोग यहां खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं। एक छोटी सी पृथ्वी के टुकड़े के लिए भी मैं क्या करने जा रहा हूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही न लगेगा। अतः माधव अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हम कैसे नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते तो क्या हुआ ही जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट होता है, धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा देता है। कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के अत्यंत दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हो हाशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। जो राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए आज खड़े हैं, इससे तो यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्र रण को मार भी डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याण का रखे। मैं जाकर युद्ध में खड़ा हो जाऊं और दुर्योधन आदि मुझे मार दे, अच्छा है, मैं क्यों मारूं? संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उन अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने कहा, अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह कैसे प्राप्त हुआ है रे? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, यह न तो स्वर्ग को देने वाला है न कीर्ति को बढ़ाने वाला है, इसलिए अर्जुन ये नपुंसकता मत आने दो। तुझमें ये कहां आ गई नपुंसकता? हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि ये दोनों मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना श्रेष्ठ समझता हूं। गुरुजनों को मार करके भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हमें ये जीतेंगे या हम इनको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं वे भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चय ही कल्याणकारक हो वो मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए अब मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर कह दिया, फिर गोविंद भगवान से कह दिया, युद्ध तो नहीं करूंगा, इतना स्पष्ट कहकर चुप हो गए। भरतवंशी अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से बचन कहे। भगवान ने कहा, अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, पंडितों कैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हों और उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हों उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। मां के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। हे प्रथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल ही गला सकता है, न वायु सुखा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अच्छेद्य है, आत्मा अदाई है, अक्लेद्य है और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, और यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला सदा मरने वाला माने तो भी महाबाहो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए को मृत्यु निश्चित होती है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित होता है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट रहेंगे, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसको तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानते। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदाई अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से ये दूसरे अध्याय की क्या बात कही। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ऐसे करके उन्होंने पूरे 18 अध्याय में ये सब सुना दिया, एक गीता पूरी सुना दी। एक गीता की रिकॉर्ड बाद में और अलग कर देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय ने कहा अंत में, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना दिया है। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहे हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारम्बार हर्षित हो रहा हूँ। राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, गीता स्वयं भगवान कमलनाभ के मुख कमल से निकली है, इसलिए इसका खूब अच्छा स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से क्या लाभ, एक गीता पर्याप्त है। गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। भगवान सर्वदेवमय है, गंगा में सब तीर्थों का वास है, तथा मनुजी के सकल वेद मनुजी सकल वेद स्वरूप हैं। गीता गंगा गायत्री और गोविंद इन गकार युक्त चार नामों के हृदय में स्थित होने पर फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण ने भारतामृत के सारभूत गीता को बिलोकर इसे अर्जुन के मुख में होमा है। अर्जुन ने कहा, संजय ने कहा, तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। उस समय पांडव सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी पेशी क्रकट्स और नरसिंहों के अकस्मात बज उठना से वहां का शब्द बड़ा विलक्षण होने लगा। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से नीचे उतरे। उनको नीचे उतरते हुए देखकर सब लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। युद्ध की भेरियां बच चुकी, ये शस्त्र रख करके रथ से नीचे उतर गए। सब आश्चर्य से देख रहे हैं और महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़े जोड़े बड़े तेजी से पूर्व की ओर जहां शत्रु की सेना खड़ी थी पितामह भीष्म की ओर देखकर पैदल पैदल चले। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और अर्जुन के कूद जाने पर भीमसेन आदि सब अपने रथ से उतर गए और वो भी धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से युधिष्ठिर महाराज के पीछे हो गए। जल्दी से चलकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, आपका क्या विचार है? आप इस समय हम सबको शत्रु सेना के सामने खड़ा कर स्वयं शत्रु सेना के अंदर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जबकि दोनों तरफ से शस्त्र बच चुके हैं। भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए हुए युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर बिना उनसे विचार विमर्श किए कवच और शस्त्र डालकर कहां जाना चाहते हैं? हमको कुछ बताया ही नहीं। नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही, आप कहां क्यों किधर जाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सहदेव ने कहा, महाराज, इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर अब आप हमें छोड़कर शत्रुओं की ओर क्यों जा रहे हैं? महाराज, हम सबके संशयों को दूर कीजिए। भाइयों की इस प्रकार पूछने पर महाराज युधिष्ठिर ने एक बार सबको देखा और उसके बाद कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चलते गए। तब बड़े असमंजस में पड़े हुए सबका मन जहां टूट चुका था, ऐसे पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ओह अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे राजा लोगों, आप लोग कोई अन्यथा विचार मत करना। मैं युधिष्ठिर के अभिप्राय को समझता हूं। ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य इत्यादि इत्यादि अपने गुरुजनों को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर फिर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। ऐसा मेरा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं और शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनकी आज्ञा लेकर संग्राम करता है उसकी अवश्य विजय होती है। ये बात तो इधर पांडव सेना की तरफ हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सबको आश्वस्त किया। उधर कौरव सेना में तो बड़ा कोलाहल हो गया, कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े हो गए। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे, आओ ये वो सत्यवादी युधिष्ठिर, कुल कलंक कहीं का, देखो ये डर करके अपने भाइयों सहित शरण पाने की इच्छा रखता है, भीष्म के जाकर चरणों में प्रणाम करके इनकी शरण चाहता है। यदि शरण में आना था तो मूर्ख युधिष्ठिर युद्ध से पहले आना था। इतनी बड़ी सेनाओं को बुलाकर इनके सामने भीष्म की हमारी शरणागति स्वीकार कर तुम कौन से धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हो? अरे इसकी पीठ पर तो अर्जुन भीम नकुल सहदेव जैसे वीर हैं, फिर ये हमारे भय से दब गया? ऐसा कहकर वे सैनिक वीर अपने आप की प्रशंसा करने लगे, वाह हम ऐसे प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। बिना युद्ध के हमने जीत लिया। युधिष्ठिर को इस प्रकार धिक्कार कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जिधर से आवाज आती है उनको देखते हैं, फिर दृष्टि घुमा लेते हैं। सब लोगों की दृष्टि क्या बात है, अब ये देखने लगे कि भीष्म के पास जाकर क्या बोलने वाले हैं। कई तो अपने रथों से उतरकर भीष्म के पास आए और रणभाव करे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामले में क्या बोलते हैं, ये भी चुपचाप सुनने के लिए पितामह के रथ के पास आकर खड़े हो गए। वस्तुतः हे महाराज धृतराष्ट्र, इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही सेनाओं में बड़ी भारी संदेह की स्थिति पैदा हो गई। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे आपसे युद्ध करना होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आप मुझे आशीर्वाद देने की भी कृपा कीजिए। स्नेह के कारण भीष्म की आंखें छलछला गई, प्रेम से उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, युधिष्ठिर यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता, किंतु मैं तुम्हारे शालीन व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। युधिष्ठिर तुम युद्ध करो और मैं आशीर्वाद देता हूं, विजय तुम्हारी होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और जितनी भी इच्छाएं सब पूरी होगी। इसके सिवा इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बात कर रहा हूं। बेटा ये शरीर मैंने कौरवों के अन्न से पाला है, इसलिए शरीर दृष्टि से मैं कौरवों की तरफ हूं और मन से आत्मा से मैं तुम्हारी ओर हूं। बोलो तुम क्या चाहते हो, निसंकोच कहो। तुम्हारे इस व्यवहार से मेरे अंदर स्नेह उमड़ रहा है। युधिष्ठिर ने फिर दादाजी के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा, दादाजी आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हो तो बताइए हम आपको इस युद्ध में कैसे जीतेंगे। भीष्म जी बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत ले ऐसा कोई संसार में योद्धा नहीं है। अन्य पुरुषों की क्या बात करो, स्वयं इंद्र भी आ जाए तो भी उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरे से युद्ध कर ले। इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना, आज अभी ये बात मैं तुमसे नहीं कहता हूं, बाद में कहूंगा। महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म की ये बात सिर पर धारण की और फिर उन्हें प्रणाम किया और वहां से वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। इधर जब कौरवों ने ये सुना तो उनका माथा ठनक गया, ये क्या है, आशीर्वाद विजय का दिया जा रहा है, युद्ध हमारी ओर से कर रहे हैं। पितामह भीष्म की चाल समझ में नहीं आ रही है, दुर्योधन तिरछी नजरों से देख रहा है और दांतों से होठ भी दबा रहा है। आचार्य द्रोण के पास गए, आचार्य द्रोण के चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा की और फिर कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे आपसे युद्ध करना होगा, मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं जिससे मुझे कोई पाप न लगे। आप ये बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय का श्राप दे देता, किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं बड़ा खुश हुआ हूं। तुम युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी, यह गुरुदेव तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता है। इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और तुम्हारी क्या इच्छा है वो मुझे बताओ, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। कौरवों के अर्थ से मैं पला हूं, इस कारण से मैं कौरवों की तरफ रहूंगा, और धर्म से तुमने मुझे माना है तो मेरा धर्म तुम्हारे पक्ष में रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, आप कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं, किंतु मैं ये वरदान मांगता हूं कि मेरी विजय चाहे और मुझे उपयोगी परामर्श दे कि मेरी विजय कैसे होगी और मुझे कैसे युद्ध करना चाहिए। द्रोणाचार्य बोले, राजन, तुम्हारे सलाहकार स्वयं भगवान कृष्ण है। हम सबने तो पहले से ही सोच लिया है कि तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध की आज्ञा देता हूं, तुम रणांगण में शत्रुओं का संहार करोगे, क्योंकि जहां धर्म रहता है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। कुंती नंदन, अब तुम जाओ युद्ध करो और तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे आचार्य, आपको प्रणाम करके एक बात और पूछता हूं। मेरा मन तो बड़ा दुखी होता है, परंतु जब युद्ध में खड़े ही हैं तो ये पूछना भी मेरे लिए अनिवार्य है। आपका वध का उपाय क्या है, आप कैसे मारे जाओगे? मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य बोले, राजन, यदि युद्ध कला के द्वारा संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ होकर मैं क्रोध में जब बाणों की वर्षा करूं, उस समय इस धरती पर कोई मुझे मार दे असंभव है। जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत हो जाऊं, उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है, शस्त्र रहते हुए नहीं मार सकता। ये तुम्हें सत्य बात कहता हूं। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूं, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो फिर मैं संग्राम भूमि में अस्त्र का त्याग कर देता हूं। द्रोणाचार्य जी की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें फिर प्रणाम किया, उनकी आज्ञा लेकर वे कृपाचार्य के पास गए। और कृपाचार्य की कृपाचार्य के चरणों में प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की और कहने लगे, गुरुदेव मुझे आपसे युद्ध करना होगा, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं जिससे मुझे कोई पाप न लगे, इसके सिवाय आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूं। वाह, क्या कहना है युधिष्ठिर, युद्ध का निश्चय हो गया फिर भी तुम मेरे पास आए हो, यदि मेरे पास न आते तो मैं भी तुमको शाप दे देता। ये पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, ये सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है, सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। न इसी से नपुंसक की तरह मुझे कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। आचार्य सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूं। इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए, चक्कर आने लग गया युधिष्ठिर को, वो व्यथित हो गए और उनके मुख से शब्द नहीं निकला। कृपाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर मैं समझ गया तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, मेरी मृत्यु नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, किंतु कोई चिंता मत करना, तुम युद्ध करो और जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारे इस समय यहां आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, मैं नित प्रति उठ करके तुम्हारे विजय की कामना करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद देता ही रहूंगा, यह मैं तुमसे ठीक ठीक बात कहता हूं। युधिष्ठिर महाराज कृपाचार्य को प्रणाम करके मद्रराज शल्य के पास गए, उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके उनसे कहा, राजन मुझे आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा, मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं मुझे कोई पाप न लगे, आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को जीत सकूंगा। शल्य ने कहा, युद्ध का निश्चय कर लेने पर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं भी तुम्हें पराजय का शाप देता, इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी इच्छा हो पूर्ण हो, तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारी और क्या अभिलाषा है। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, ये बात सत्य है, इसी से मुझे नपुंसक की तरह पूछना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध कराने के सिवाय तुम और क्या चाहते हो, तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वरदान है, कर्ण से युद्ध होते समय आप कर्ण के उत्साह को तोड़ते रहना बस। शल्य बोले, ऐसा ही होगा युधिष्ठिर, जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारी बात की पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूं। संजय बोल कहते हैं, हे धृतराष्ट्र महाराज, मद्रराज शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए और बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। देखो ये तो कहां गए, भगवान कर्ण के पास गए, भगवान कृष्ण कर्ण के पास गए, बड़े प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई कर्ण, मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। कर्ण ने कहा, हां कृष्ण, जब तक ये बुढ़ा रहेगा तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म जी नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारे पांडवों की तरफ आ जाओ, पांडवों की तरफ से युद्ध करो, और भीष्म जब मारे जाए तुम उनकी तरफ से युद्ध कर लेना, इनके मारे जाने पर युद्ध, फिर दुर्योधन की सहायता करना, फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना। करने का, वाह केशव वाह, तुम्हारी चतुराई वाह, तुम पांडवों की तरफ भी युद्ध कराना चाहते हो पांडवों से विरुद्ध भी युद्ध कराना चाहते हो, दुर्योधन की तरफ से भी युद्ध कराना चाहते हो और दुर्योधन के विरुद्ध भी युद्ध कराना चाहते हो। हे केशव, मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं भी अपने धर्म से बंधा हुआ हूं। आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितेशी समझिए, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूं। भगवान खूब हंसे मुस्कुराए और कर्ण की बात सुनकर भगवान फिर वहां से लौट आए, पांडवों से मिले। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से जोरदार गर्जना की, जो वीर हमारा साथ देना चाहे अपनी सहायता के लिए, मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूं। कोई उस सेना में से हमारी तरफ आए, आओ। यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने वहां से आवाज लगाई, हे महाराज युधिष्ठिर, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करते हो तो इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ मैं युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सु आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही सारे भाइयों को पिंड मिलेगा। फिर युयुत्सु दुंदुभी घोष के साथ साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने रथ पर चढ़ गए, दुंदुभी घोष होने लगा, बड़ा बड़ा सिंहनाद होने लगा। पांडवों के रथ में बैठे हुए धृष्टद्युम्न आदि राजाओं को बड़ा हर्ष हो रहा है। पांडवों ने माननीयों का मान करने का गौरव प्राप्त किया, ये देख करके राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया और अपने बंधु बांधवों के प्रति बड़ी सुरिता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे। अब कल यहां बैठते ही युद्ध चालू हो जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण।